जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जनवल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी राधा दव कुंज विहारी जय जय राधा दव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jai Jai Jagannath Jai Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Shila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Nashta Prayesha Badresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishiki. Srimad Bhagavatam Skandano Adhyay Unnis Shlok Sankhya 20. Drishtam Shrutam Asat Buddhva na anudhyayet na sandhiset samsmatim cha atmanasham cha tatra Vidvan Saha Atmadrik दृष्टं श्रुतं असद्बुद्ध्वा दृष्टं श्रुतं असद्बुद्ध्वा नानुध्यायेन्न संदिशेत् नानुध्यायेन्न संदिशेत् संस्मृतिं चात्मनाशं च संस्मृतिं चात्मनाशं च तत्र विद्वांसात्मदृक् अत्र विद्वांसात्मदृक् दृष्टं श्रुतम ध्यायेन नान्युध्यायेन सन्दिशेत् संस्मृतिं चात्मनाशं च संस्मृतिं चात्मनाशं च अत्र विद्वान्नात्मदृक् अत्र विद्वान्नात्मदृक् संस्कृतम् असद्बुद्ध्वा नानुध्यायेन संशयेत् विद्वांसात्मदृक्संसदम्मसद्बुद्ध्वा नानुध्यायेन संविशेत् संस्मृतिं चात्मनाशं च अत्र विद्वांसात्मदृक् दृष्टं हमारे द्वारा वर्तमान जीवन में अनुभूत भौतिक भोग जो सकाम कर्मियों को भावी सुख के लिए मिलता है, वर्तमान या अगले जीवन में या स्वर्गलोक आदि में असत जो क्षणिक तथा निकृष्ट है बुद्ध्वा जानकर नहीं अनुध्यायेत सोचना चाहिए ना तो संदिशेत वास्तव में भोग करना चाहिए संस्मृतिम संसार का लंबा होना चा तथा आत्मनाशम अपनी स्वाभाविक स्थिति का विनाश चा भी तत्र ऐसे विषय में विद्वान पूर्णतया अवगत सह ऐसा व्यक्ति आत्मदृक स्वरूप सिद्ध। अनुवाद और तात्पर्य है डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, जो यह जानता है कि भौतिक सुख चाहे अच्छा हो या बुरा, इस जीवन में हो या अगले जीवन में, इस लोक में हो या स्वर्ग लोक में हो, क्षणिक तथा व्यर्थ है। और जो यह जानता है कि बुद्धिमान पुरुष को ऐसी वस्तुओं को भोगने या सोचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वह आत्मज्ञानी है। ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भलीभांति जानता है कि भौतिक सुख बारंबार जन्म एवं अपनी स्वाभाविक स्थिति के विस्मरण का एकमात्र कारण है। तात्पर्य, जीव आत्मा है और भौतिक शरीर उसका बंधन है। यह आध्यात्मिक ज्ञान का शुभारंभ है। देहिनोऽस्मिन्यता देहे कौमारं यवनं जरा तद्देहंतर प्राप्य। जिस तरह इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बालपन से युवावस्था और वृद्धावस्था में प्राप्त होता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वह ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होते। मानव जीवन का असली उद्देश्य भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होना है। इसलिए कृष्ण बद्ध आत्मा को आत्म साक्षात्कार सिखाने तथा भवबंधन से मुक्त होने की विधि बताने के लिए अवतरित होते हैं। इदा याहि धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत। धर्म ज्ञानी का अर्थ है जीवन का प्रदूषण। हमारा जीवन अब प्रदूषित है, ऐसे शुद्ध इसे शुद्ध किया जाना चाहिए। सत्वम शुद्धयेत, मानव जीवन इसी शुद्धि के लिए है, ना कि बाह्य शरीर के रूप में सुख का चिंतन करने के लिए, जो भवबंधन का कारण है। अतएव इस श्लोक में महाराज याति उपदेश देते हैं कि हमें जितना भी सुख दिया जा दिखता है तथा जितने की हमें आशा है वह सब केवल क्षणिक एवं नश्वर है। हा ब्रह्म वृणालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन, यदि कोई ब्रह्मलोक भी चला जाए किंतु यदि भवबंधन से मुक्त नहीं हो तो वह इस पृथ्वी लोक पर लौट आता है और संसार में दुखमय स्थिति में रहता है। भूत्वा भूत्वा पलियते, मनुष्य को चाहिए कि वह इस जानकारी को सदा मन में रखे ताकि वह इस जीवन में या अगले जीवन में किसी प्रकार के इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट ना हो। जो इस सत्य से पूर्णतया अवगत रहता है वह स्वरूप सिद्ध है, किंतु उसके अतिरिक्त अन्य सारे लोग जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। मृत्यु संसार वर्तमान, ऐसे ज्ञान असली बुद्धि का है और इसके विरुद्ध जो भी है वह दुख का कारण है। कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्त निष्कामतेव शांत, केवल कृष्ण भक्ति ही शांत है क्योंकि वह जीवन के लक्षण को जानता है। अन्य सारे लोग चाहे कर्मी हो या ज्ञानी हो अतएव योगी अशांत रहते हैं और असली शांति नहीं भोग पाते। ज्ञाभिरांदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्मैष्टवानुश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणलिता श्रीशाकान्वितां। हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते भक्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये याति के द्वारा उनकी पत्नी देवयानी को वर्णन करने वाले श्लोकों में से आखिरी श्लोक है। कोई भी प्रवचन होता है उसका शुरुआत और अंत महत्वपूर्ण होता है। शुरुआत में क्या विषय वस्तु है उसका वर्णन हुआ है इस प्रवचन का, और अंत में जो भी प्रवचन में कहा गया है उसका सार रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, सार प्रस्तुत किया जाता है, उसको उपसंहार बोला जाता है। यानी ययाति अपनी देवयानी को उनकी अनुभूतियों को वर्णन करते हुए उनके अनुभूतियों का सार को ये श्लोक में वर्णन करते हैं। इसलिए ययाति देवयानी के जो संवाद है उसमें बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ययाति देवयानी संवाद जो है ये संवाद सारा भौतिक जगत में रहने का सार संवाद है। जिस उद्देश्य की वजह से भगवान ने हमको इस भौतिक जगत में भेजे हैं या इस भौतिक जगत में जन्म लिए हैं तो उस भौतिक जगत को भोगने की प्रवृत्ति स्वाभाविक तरीके से रहता है। अगर भोग भी करना है, भोग का सार क्या है, ये साक्षात्कार। आज भौतिक जगत के जो भोग है उसका परिणाम ये साक्षात्कार होना चाहिए। द रियलाइजेशन ऑफ मेटीरियल एंजॉयमेंट शुड बी दिस। तो ये श्लोक में ये याति देवयान को कहते हैं, ने कहा कि दृष्टम श्रुतम असद्बुद्ध्वा। असद्बुद्ध्वा का अर्थ क्या है? बुद्ध्वा का अर्थ है कि जानना, टू नो। क्या जानना? कि ये भौतिक जगत असत है। असत का दो अर्थ है, एक अर्थ है कि अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। दूसरा है असत शब्द का, वो टेम्पररी है, यानी उसका शाश्वत नहीं है। तो ये शाश्वत नहीं है और साथ साथ में दुखमय है, इसलिए वो खराब है। आपके पास अगर कोई वस्तु दिया जाए जो अगर आपको दुख देता है तो क्या बोलोगे उसको? खराब वस्तु बोलोगे। इस जगत में अच्छाई और बुराई किसके ऊपर आधारित है? मैं उस वस्तु को अच्छा है कहता हूं इससे, क्योंकि वो मुझे सुख देता है। अगर वही वस्तु मुझे दुख देने लग जाए तो क्या करता हूं? वो खराब है। ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति अच्छा है, हम कैसे बोलते हैं? किसके ऊपर आधारित होकर हम ये निर्णय लेते हैं कि व्यक्ति अच्छा है? अगर ये व्यक्ति मुझे सुख देता है तो ये अच्छा व्यक्ति है, भले वो चोर भी क्यों ना हो। चोर दुनिया के लिए, मेरे लिए तो नहीं ना, तो ये अच्छा है। तो ये व्यक्ति खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि ये मुझे सुख नहीं दे रहा है, इसकी वजह से मुझे दुख मिल रहा है। भले ही वो कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना, शास्त्र के हिसाब से अच्छाई और बुराई का जो परिभाषा है, तो वो परिभाषा क्या है? मुझे सुख मिल रहा है कि नहीं। जो मुझे सुख देता है या जो वस्तु मुझे सुख, जिससे सुख मिलता है वो अच्छा वस्तु है, और जिससे मुझे दुख मिलता है वो खराब वस्तु है या खराब व्यक्ति है। तो इसलिए ये असत बुद्धवा, ये भौतिक जगत मेरे लिए खराब है। वैसे बोला जाए या असत भौतिक जगत दुखाल है या शाश्वत है, वो बोलने जीव को इतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि वही चीज जो हमको समझ में आता है जो हमारे अनुभव के अंतर्गत हो, या अनुभव अनुभवात्मक चीज जो है वो। अगर कोई जहर है, जहर है हमको नहीं मालूम, नहीं कड़वा है, खाने के लिए ठीक नहीं है, ये बहुत विकार होता है, तब नहीं खाएगा, ठीक है? अगर उसको बोलेंगे, उसकी वास्तविक यथास्थिति कहेंगे, उसका स्वरूप ज्ञान देंगे कोई वस्तु का, तो कितना भी उसका वर्णन करते जाओ तो उससे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। जब उस स्वरूप ज्ञान को हमारे संबंध में कहा जाता है, उस व्यक्ति के संबंध में कहा जाता है, तब वो जो ज्ञान है उसके हृदय में पहुंचता है, वो समझ सकता है। जैसे कि भौतिक जगत दुखकाल या शाश्वत बोलेंगे तो वो हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। बोलते ऐसा नहीं, ये तुम्हारे लिए बहुत खराब है, तुमको दुख देने वाला है, तो ऐसा है क्या? तब तो मैं नहीं कहूंगा। तो इसलिए भौतिक जगत का स्वरूपगत ज्ञान एक है, दूसरा है उस जगत के द्वारा मुझे किस प्रकार दुख मिलता है वो अनुभवात्मक ज्ञान एक है। इसलिए दो शब्द इस्तेमाल किया गया है, दृष्टम श्रुतम। दृष्टम श्रुतम इन दो शब्द का अर्थ इसलिए है क्योंकि दृष्टम का अर्थ है देखना, अनुभव। एक व्यक्ति जो है अनुभव से सीखता है, दूसरा व्यक्ति क्या है? वो सुनने से सीखता है। तो ये दृष्टम श्रुतम का दो अर्थ है। सबसे पहला अर्थ मैं इस बात को कहता हूं, दृष्टम का अर्थ है देखना, देखना अर्थ है कि अनुभव करना। कुछ लोग अनुभव करते हैं, क्या अनुभव करते हैं? अनुभव करके सीखते हैं कि ये भौतिक जगत असत है, तब बुद्धवा वो जानते हैं। असत बुद्धवा दृष्टम, दृष्टम असत बुद्धवा। अनुभव करने के बाद पता लगते हैं, ओरे रे रे मैंने गलती कर दिया, अभी कब से सीखा तो सही, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या है? श्रुतम। कुछ लोग सुनने से सीख जाते हैं,
सुनने से सीखने वाले जो हैं वो हाई क्लास होते हैं, उनको अनुभव करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर किसी को बोला जाए ये जहर है, अच्छा है क्या, मैं नहीं पीऊंगा उसको। अगर किसी को बोलेंगे जहर है, नहीं मुझे कैसे मालूम, तुमको कैसे मालूम, पी के देखो। तो आप करने के बाद मालूम पड़ता रही जहर है, मालूम करने के बाद अगला जन्म मिल गया उसको। आजकल ये फिलॉसफी बहुत प्रसिद्ध है, वो लोग कहते हैं कि आप लोग ब्रह्मचारी बन जाते हो, देखो दुनिया का अनुभव करो बाद में संन्यास लो। हाँ, अनुभव नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं है। सबको अनुभव करना चाहिए, यू शुड एक्सपीरियंस एवरीथिंग देन यू शुड गिव इट अप। तो वो लोग सेकेंड क्लास बुद्धि है। प्रभुपाद जी उपदेशामृत की शुरुआत इस बात को लिखते हैं, इसी बात को दृष्टो श्रुतो वा, ये श्लोक आता है प्रसंग में, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के प्रसंग में, गजस्नानम, क्या है वो श्लोक, कुंजल शौचवत, क्या श्लोक है याद नहीं आ रहा, दृष्ट्वा श्रुताभ्यम, दृष्ट्वा श्रुताभ्याम आत्मनो अहितम, उनको मालूम है आत्मनो अहितम, लेकिन फिर भी कुंजल शौचवत, पाप क्यों करता है, प्रायश्चितम, क्या प्रायश्चित की क्या आवश्यकता, क्या होने वाला है इसको, कुंजल शौचवत, ये श्लोक है। ये दृष्टम श्रुतम महत्वपूर्ण शब्द है, यानी कुछ लोग सुनने से सीख जाते हैं, कुछ लोग अनुभव से सीखते हैं, लेकिन सीखना महत्वपूर्ण है, बुद्धवा महत्वपूर्ण है। बाद में दृष्टम श्रुतम का और एक अर्थ है कि एक बार अनुभव कर लेता है कोई व्यक्ति, अनुभव करने के बाद अगर कोई सुनाता है, देखो अभी तुमको खराब अनुभव हुआ ना, चिंता मत करो, ये ठीक नहीं था, आगे जो है भविष्य तुम्हारा बहुत उजाला है, चिंता मत करो, आगे तुमको बहुत अद्भुत चीज मिलने वाले भौतिक जगत में। ये सुनने के बाद भी वो समझ जाता है ये गलत है। कभी कभी इस दुनिया में कुछ फिलॉसफी बोलते हैं, फेल्यूर्स और द स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस, ठीक है नहीं, क्या उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, नाकामयाबी जो है सफलता का सीढ़ी है, हा? पहली सीढ़ी है, हा? पता नहीं कितने सीढ़ी है। नाकामी को जो है सफलता का पहली सीढ़ी है, तो जब कोई नाकामयाब होता है, उदास हो जाता है, उसको जागृत कहते हैं, देखो ये नाकामी जो है तुम्हारा वो सफलता का पहली सीढ़ी है, आगे तुमको सफलता मिलेगी, और एक कदम रखो। जैसे और एक कदम रखता है तो फिर वापस वही दुख मिलता है उसको, तुम चिंता मत करो, ये दुख दिया लेकिन वो जो है वो दुख नहीं देगा, उधर जाओ, तो फिर वापस और एक रखता है। तो ऐसा करते करते जब मरने वाला रहता है वो टाइम बहुत दुखी फंसते रहता, चिंता मत करो, एक पंडित आके कहेगा आप स्वर्ग जाओगे, उधर सुख भोगोगे। ये श्रुतम बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। तो जो बुद्धवा जो जान लेता है, केवल यही नहीं जानना कि ये संसार अभी का संसार जो दुखमय है, बाद में भी संसार का स्वरूप वही होने वाला है, चाहे 10,000 साल के बाद भी वैसे रहने वाला है। कितना भी गीत गाओ हम होंगे कामयाब एक दिन, भौतिक जगत ही रहने वाला है, मटेरियल नेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये भौतिक स्तर में जितने भी लोगों को उत्साह देने वाली, प्रेरणा देने वाली मोटिवेशन सेमिनार होता है, वो सब जो है झूठा है, झूठ बोल के लोगों को फिर वापस उत्साह दिलाते हैं। जैसे कोई कंपनी है, कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, जब फेल होता है या दुख को अनुभव करता है, वो फ्रस्ट्रेट होता है, तब वापस उनको मोटिवेशन दिलाया जाता, चिंता मत करो बेटा, देखो ये अच्छा ये करोगे तुमको ये मिलेगा, देखो वो बच्चा देखो उसको ये मिला तो तुमको ये मिलेगा। उसको दृष्टौ श्रुतौ श्रुतम लोग सुनाते हैं। जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो चुका है, उसको आप भौतिक जगत की लालसा कितना भी दो, कितना भी सुनाओ, उसका मन जो है विचलित नहीं होगा, ये विल नेवर बी डिविएटेड। इसलिए भगवद गीता में भगवान इस बात को कहते हैं कि क्या उसको क्या श्लोक नहीं है, यथा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वित्रिष्यसि, यथा ग्रंथास निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतयस्य च, श्रोतव्य श्रुतयस्य च, दूसरे अध्याय का श्लोक है। यथा ते मोहकलिलम बुद्धिर्वितरिष्यसि, एक बार एक व्यक्ति का बुद्धि ये मोहकलिलम, ये फॉरेस्ट ऑफ मटीरियल एंजॉयमेंट, ये भौतिक जगत या भौतिक संसार नामक मोह नामक ये जो कलिलम फॉरेस्ट जंगल, उसको पार कर लिया, उसको आप कितना भी सुनाओ वो कभी भी उनका मन विचलित नहीं होगा। तो इसको आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। भौतिक जगत में अनेकों अनेकों लोग प्रस्ताव रखते हैं, बेटा चिंता मत करो, जब आप कृष्ण का शरण लेने जाओगे या जा रहे होंगे, लोग बोलेंगे बेटा तुम्हारे जीवन में तकलीफ है ना, चिंता मत करो, सब दूर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लोगों को हौसला देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन जिसका बुद्धि वितरिष्यसि, जिसका बुद्धि जो है ये भौतिक संसार से पार हो चुका है, आत्म साक्षात्कार में स्थित है, वो इन बातों को सुनेगा ही नहीं। जब लोग उनको सुनाएंगे तो उनके सामने हाँ 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 बोलेंगे, लेकिन करेंगे उनके मन के हिसाब से। हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करना है सच में, आप सबकी बात सुनो लेकिन करो आपके मन के हिसाब से। यानी इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति आपको जो भी सुनाता है वो केवल एक आशा देता है, आज ठीक है बेटा कल ठीक हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये केवल झूठा आशा मात्र है। आज जैसा है कल और खराब होने वाला है, ये कोई नई कुछ मिलने वाला नहीं है उधर। तो इसलिए इस जगत में हर व्यक्ति नयापन को ढूंढता है, लोगों को बुलाना चाहते हैं अस्तित्व से, इसलिए अनेकों अनेकों प्रकार की व्यवस्था करते हैं, ये कोई ये घर को सजाता है, कोई इसको नया गाड़ी लेता है, कोई ये करता है, ये सब चीजें क्यों, क्योंकि अलग अलग प्रयास कर रहा है, नहीं इससे सुख नहीं मिलता उससे मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा तो उससे मिलेगा, वैसा खोज कर रहा है। लेकिन आत्म साक्षात्कार में जो स्थित है बुद्धवा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उनको एक बार मालूम पड़ गए बहुत ही जगत में है ही नहीं, तब उसको कितना भी व्यक्ति सुनाए वो उसका मन जो है आत्म स्तर में आत्म साक्षात्कार से हिलता नहीं है। तो उस व्यक्ति को हम इस्कॉन की भाषा में फिक्स्ड अप डिवोटी कहते हैं। फिक्स्ड अप डिवोटी क्या है, जिसका निष्ठा हो चुका है, फिक्स्ड अप हो चुका है, जिसकी देह हो चुका है, वो कौन है, वो उनको आप कितना भी लाख सुनाओ वो कहीं भी जाएगा, कुछ भी देखेगा, कुछ भी सुनेगा, उसका मन जो है कृष्ण के चरण कमलों से हटेगा नहीं। श्री विश्वनाथ ठाकुर ये दृष्टवा शब्द के ऊपर टीका करते हुए कहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी दृष्टवा शब्द जो है वो श्रीधर स्वामी की टीका के अनुसार वो व्याख्या करते हैं, श्री विश्वनाथ ठाकुर की टीका के अनुसार दृष्टवा शब्द का अर्थ ये है कि सीइंग द सुप्रीम लॉर्ड, ब्रह्म दर्शनम दृष्टवा। ब्रह्म दर्शनम दृष्टवा का अर्थ क्या है, जैसे पिछले श्लोक में वर्णन किया गया है, ब्रह्मण्याध्यात्म मानसम, ब्रह्मण्याध्यात्म मानसम, उनकी मन को ब्रह्मणी भगवान श्री कृष्ण में उन्होंने लगाया। उसकी पुट याका करते हुए कहते हैं श्री कृष्ण ठाकुर ने मानसम, उनकी मन को लगाया। मन को लगाया का अर्थ कि मन में कोई ना कोई अध्याय सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ब्रह्मणी, ब्रह्म के बारे में सोच रहे हैं, ब्रह्म के बारे में क्या सोच रहे हैं, ब्रह्म के गुणों के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में सोच रहे हैं। इसका अर्थ है, इधर ब्रह्मणी शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के बारे में अध्याय मानसम, अध्याय मानसम के बार 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 स्मरण करते करते क्या हुआ, ये याति ने दृष्टम। तो विश्वनाथ ठाकुर के अनुसार क्या है, ब्रह्मणी दृष्टम, इन्होंने क्या किया, याति ने श्री कृष्ण को दर्शन किया। श्री कृष्ण का जैसे उन्होंने दर्शन किया तो क्या हुआ, असत बुद्ध्वा श्रुतम, असत बुद्ध्वा श्रुतम अर्थ क्या है कि उन्होंने तुरंत समझ गए, क्या समझ गए, कि भौतिक जगत की जो वास्तविक स्थिति है दुखाल रसाश्वत है, उसको समझ गए। पहले भी समझे थे लेकिन समझने के बावजूद भी वापस हम उस भौतिक जगत को भोगने की प्रयास करते थे, ये जो साधक की अवस्था होता है, जैसे हम लोग इधर बैठे हैं सबको मालूम है भौतिक जगत दुखार और अशाश्वत है, लेकिन जैसे मैं को मौका मिलता है तुरंत उसको उसके पीछे भागने का रहता है, कहीं ना कहीं मन में रहता है। लेकिन साधना करते करते जब भगवत साक्षात्कार होता है तब ये भौतिक जगत की सामग्री आजू बाजू में होने पर भी, मौका होने पर भी, समय होने पर भी उसको तुच्छ मान लेते हैं। लेकिन साधना के समय बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए भगवत में भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते नारस्तिन रसवर्जम रसोक्तस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। दृष्ट्वा शब्द बहुत जगह आया है। ये परम दृष्ट्वा, परम दृष्ट्वा का अर्थ क्या है? परम मतलब भगवान श्री कृष्ण। जैसे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ, ययाति को क्यों प्राप्त हुआ? पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है ब्रह्मण्याध्याय मानसम, बार बार भगवान का गुणों के ऊपर स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, करते करते क्या हुआ? उनको भगवान दर्शन प्राप्त हुआ। इसलिए भागवतम में कहा गया है श्रीमताम सर्वतः कृष्ण, इस श्लोक से शुरुआत होते हुए अंत में कहा गया है, क्या कहा गया है? विद्यते हृदय ग्रंथ छिंदंते सर्व संशय क्षीयंते चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनीश्वर। अब देखिए दृष्टा शब्द कहां का आया है? दृष्टा एव आत्मनीश्वरे, कि मैं कौन हूं? भगवान का सेवक हूं, कृष्ण का सेवक हूं, और कृष्ण का सेवा ही मेरा एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। ये बात पूर्ण तरीके समझ गए, इसलिए वो दर्शन इस प्रकार होने के बाद चिन्नते सर्व संशय। जब तक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता है तब तक संशय रहता है। हो सकता है देखो मैं दुखी हूं, लेकिन हो सकता है कोई और तो सुखी होगा ना भौतिक जगत में, कहीं ना कहीं संशय रहता है। तो इसलिए जब कभी जो नव सिखिया भक्त होते हैं या जिसको परिपक्वता नहीं है, उनको एक भौतिक जगत की जो सुख आनंद करने वाला जो माहौल होता है उससे दूर रहना पड़ता है, क्योंकि उनको देखेंगे ऐसे उनके मन में संशय आता है। शास्त्र में कहा गया है कि दुखा अशाश्वत है, लेकिन ये इतना सुखी कैसा है? क्योंकि उसको दूर से देखता है भौतिक जगत को। मान लीजिए किसी का विवाह हो रहा है, नाच रहे, गा रहे, सब सुख अनुभव कर रहे, लगता है कि क्या सच में भौतिक जगत दुखा रहा है क्या? लेकिन ये सुखी कैसा है? संशय आ सकता है। लेकिन जब भगवत दर्शनम, भगवान का दर्शन हो जाएगा तो क्या होगा? कितना भी सुख को दिखाई पड़े या सुखमय परिस्थिति में कोई दिखे इस भौतिक जगत में, फिर भी उनका मन जो है भगवान के प्रति ही रहेगा। इसलिए इधर दृष्टम शब्द के ऊपर श्री विश्वनाथ ठाकुर इस प्रकार कहते कि सीइंग द सुप्रीम लॉर्ड एंड दस हैविंग अंडरस्टूड द टेम्पररी नेचर ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस। आगे दृष्टम श्रुतम असद बुद्ध्वा नानु ना अनुध्यायेत न संदिशेत, न अनुध्यायेत न संदिशेत संदिशेत। तो एक बार बुद्ध्वा एक बार जाने के बाद इधर उपदेश देते न अनुध्याय, फिर वापस इधर मत आना, वापस उसके बारे में सोचो मत कि ये भौतिक जगत में सुख है या मुझे इधर कुछ मिलने वाला है करके, कभी उसको सोचो मत। न अनुध्यायेत ना संदिशेत, यानी दूसरे शब्दों में एक बार उसका ये हो गया, साक्षात्कार हो गया आत्मबुद्ध्वा, एक बार जान लिया, कभी भी भौतिक जगत के सुख मिलेगा करके सोचेगा भी ना, वो भोगने का प्रयास करेगा। संस्मृतिम, क्यों? कि उनको मालूम है कि भगवान को भूलना ही, ये भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्ति ही मेरा इस जगत में बार बार जन्म लेने का कारण है। आगे आत्मनाशम, केवल भौतिक जगत में बार बार आने का कारण ही नहीं है, बल्कि आत्मनाशम का अर्थ क्या है? भगवान के साथ जो मेरा संबंध है उसका भूलने का भी कारण है। चा तत्र विद्वान स आत्मदृक्, तत्र विद्वान, जो ऐसा जो जानता है वो कौन है? आत्मदृक। आत्मदृक का अर्थ क्या है? कि सेल्फ रियलाइज्ड सोल। पिछले श्लोक में यानी कल के श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है। ययाति महाराज कहते हैं देवयानी को, अपनी पत्नी को, निर्द्वंद्वो निरहंकार चरिष्यामि मृगैः सह। निर्द्वंद्वो निरहंकार, कोई द्वंद्व के बिना, कोई अहंकार के बिना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, उसके बिना मैं चरिष्यामि, मैं कहां जाना चाहता हूं, मैं जंगल में जाना चाहता हूं, जंगल में चरिष्यामि, मैं इधर उधर विहरण करना चाहता हूं। मृगैः सह का अर्थ क्या है? मृगों के साथ में, भगवान का ध्यान करते हुए मृगों के साथ में रहना चाहता हूं। तो इसके विषय में श्री लक्ष्मीनाथ सिंह ठाकुर कहते हैं, आई विल डांस कृष्ण सारा डियर विल अब्सॉर्ब इन पास्टाइम्स ऑफ कृष्ण। तो ये मृग शब्द भागवतम में अन्य जगह आया है, माया मृगम दैत्येप्सितम अन्य धावत। ये माया मृगम का अर्थ क्या है? माया मृगम का दो अर्थ है, वैसे तो अनेक अर्थ है उसमें, लेकिन दो इधर महत्वपूर्ण अर्थ है। माया मृगयति, इस जगत में सब लोग माया के पीछे मृग के रूप में भाग रहे हैं। मृग का अर्थ क्या है? डियर, और एक बछड़ा भी हो सकता है, बछड़े को ही मृग बोला जाता है। एक बछड़ा कैसे आजू बाजू में घूमता है, माँ के गाय के आजू बाजू में, एक गाय है तो बच्चे को छोड़ो तो इधर उधर डांस करता रहता है आजू बाजू। तो इसको माया मृगयति कहा गया है। इस जगत में माया, हम सब लोग कौन है? मृग है, माया है, और माया के इर्द गिर्द भाग रहे हैं, इधर भाग रहे, इधर भाग रहे, यानी जैसे माया नचाती है उस प्रकार हम सब नाच रहे। तो ये याति अपनी पत्नी देवयानी कहते हैं, मैं बहुत नाचा माया के सामने भी, आई डांस इन फ्रंट ऑफ माया, माया जैसे चाहती है वैसा मुझे नचाई बहुत, अभी मैं माया के साथ नाचना नहीं चाहता हूं, अभी कृष्ण के साथ नाचना चाहता हूं। डांस करना ही है मुझे, तो माया के साथ डांस क्यों करे, मुझे डांस करना है तो कृष्ण के साथ मैं नाचना चाहता हूं। आई हैव प्लेड अराउंड बट नाउ आई डोंट वॉन्ट, आई वॉन्ट टू बी अब्सॉर्ब इन द पास्ट टेंस ऑफ कृष्ण। इसके विषय में श्री भक्तिनाथ ठाकुर यही बात कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इस भौतिक भोग से मुक्त होना है और माया का लाभ से बचना है तो कृष्ण के साथ उनको भोगना होगा। कृष्ण के साथ भोगने का अर्थ क्या है? कृष्ण की लीलाओं में आनंद लेना होगा। हे कृष्ण, मैं कब आपकी लीलाओं में प्रवेश करूंगा, मैं आपके साथ कब रहूंगा, केवल ये आशा जो है कृष्ण के पास जाने के लिए, जो लालसा जो है, वो लालसा जो है हमारे हृदय में इस भौतिक जगत को भोगने की लालसा को वो समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। लालसा मय लौल्यम। तो ये दो श्लोकों में, ये श्लोक में, पिछले वाले श्लोक में ययाति देवयानी को इसी बात को कहते हैं, अभी मैं माया के सामने बहुत नाचती, अभी मुझे कृष्ण के साथ में नाचना है, तो इसलिए उसको आत्मदृक कहा गया है, सेल्फ रियलाइजेशन, आध्यात्मिक या अनुभूति या सेल्फ रियलाइजेशन। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अरे अनेकों साल के बाद आएगा, पता नहीं कितना समय होगा उसके लिए, उसके लिए लंबा समय की जरूरत नहीं है। अगर कोई श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, तीव्र इच्छा रखता है मुझे बस कृष्ण को प्राप्त करना है, आई हैव टू जस्ट गो टू कृष्ण, तो उसी क्षण उनका भौतिक संसार खत्म हो जाता है। खाली समय की बात है बस, इट इज जस्ट इमीडिएटली कैन पुट ए फुल स्टॉप। तो ये याति इतना साल भोग करने के बाद अचानक उन्होंने कैसे छोड़ा, बड़ा प्रश्न था। तो उसके लिए उदाहरण दिया गया, आगे उदाहरण आता है, जैसे एक पक्षी पंख आते ही उड़ जाता है कि नहीं, उसी प्रकार ययाति ने क्या किया, देवयानी को प्रवचन दिया, कल तक ने क्या किया था, बहुत भोग किया, लेकिन एक प्रवचन दिया, बोला कि इसे तुरंत छोड़ के चला गया। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी ये भौतिक भोग से तुरंत छोड़ना मुश्किल है, ये आरती जितना भोग किया उतना कोई हो सकता है कोई भोग करने का सोच भी नहीं सकता, ऐसा तो उस प्रकार का सुविधा तो है नहीं किसी जगह किसी व्यक्ति के पास इधर कि उनके पुत्र के पास जाकर उनका जो युवावस्था को ले, ऐसा सिचुएशन ऐसा कोई डॉक्टर लोग तो नहीं कर सकते, डॉक्टर जी आप बताइए मेरा पुत्र का युवावस्था मुझे दीजिए ऐसा कोई ऑपरेशन है, वो नहीं है। यानी जो सोच भी नहीं सकता उतना भौतिक भोग ये याति ने किया, इतना करने के बाद तुरंत उन्होंने छोड़ दिया विद इन वन सेकेंड। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं प्रभु जी धीरे धीरे छोड़ेंगे, वो धीरे धीरे कुछ होता नहीं है, इट विल नेवर हैपन। वो छोड़ना जो है वो क्या होता है, वो अचानक ही होता है। मृत्यु धीरे धीरे आता है क्या? नहीं आता, इट डजंट हैपन। तो मान लो किसी को सिगरेट पीने की आदत है, अगर कोई कहे नहीं तुम 10 सिगरेट पीते हो रोज, आज से तुम 6 करना, बाद में धीरे धीरे 4 करो, तो करेगा धीरे धीरे होता है, अचानक वापस 10 कर देगा, एक दिन 100 कर देगा। अभी छोड़ो ये सब चीजें आप कर रहे हैं तो, अगर छोड़ना जो है क्या होता है, एक साथ छोड़ना है छोड़ देना बस और कुछ नहीं। तो ये याद नहीं, ये परफेक्ट उदाहरण है, ही जस्ट लेफ्ट इट। इससे कोई गंदी आदत है वो धीरे धीरे छोड़ेंगे, इसका अर्थ क्या, थोड़ा सा पकड़ना चाहता हूँ थोड़ा छोड़ना चाहता हूँ, वो कहें छोड़ना है तो छोड़ना ही है, शुड गेट गिव इट अप। तो वैराग्य भी ऐसा ही है, कोई ऐसा धीरे धीरे आता है, इसका अर्थ क्या है, कम से कम भक्ति में रहो बाद में देखा, लेकिन यार छोड़ना होता है तो अचानक ही छोड़ना होता है। तो ययाति अपनी पत्नी देवयानी को ये कह के तुरंत निकल जाते। अगले श्लोक में यही वर्णन है, 21वां श्लोक में सुखदेव गोस्वामी सेड आफ्टर स्पीकिंग इन दिस वे टू हिज वाइफ देवयान ययाति हु वाज नाउ फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स कॉल्ड हिज यंगेस्ट सन, उनके पुरु को बुलाया सबसे लोएस्ट यंगेस्ट पुत्र को बुलाकर उन्होंने कहा वापस ले लो तुम्हारा युवावस्था, तुम ले लो बुढ़ावस्था मुझे दे दो, मैं जा रहा हूं, ही जस्ट लेफ्ट। तो ये आत्मद्रिक का लक्षण है, इसमें यही सीख है, द होल एसेंस इज दिस थिंग, सीख यही है। कृष्ण को प्राप्त करने का जो लालसा है वही चीज है जो भौतिक लालसा को खत्म कर सकता है। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चन? इनका प्रश्न यह है कि भौतिक सुख जो है क्षणिक है, मेटेरियल एंजॉयमेंट इज टेम्पररी क्षणिक है, लेकिन प्रश्न यह है कि वो क्षण के लिए भी कैसे मिला उसको, सार रूप में ही प्रश्न है। क्योंकि भौतिक जगत जो है वो कृष्ण के द्वारा बना हुआ है, और कृष्ण कौन है, पूर्ण आनंदमय है। क्योंकि ये भौतिक जगत कृष्ण के द्वारा बना हुआ है, ये भौतिक सुख भी जो क्षणिक रूप में जो मिलता है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि भौतिक जगत कृष्ण का द्वारा ही बना हुआ है। क्योंकि कृष्ण का स्वभाव क्या है, आनंदमय है, तो उनकी जो सृष्टि भी क्या है, आनंदमय है। तब प्रश्न उठा सकता है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, आपको मिलेगा लेकिन आध्यात्मिक जगत में मिलेगा। इसलिए भागवतम में पहला स्कंद के 30वें अध्याय में ये श्लोक आता है, सवा इदम विश्वमोघ लीला सृजस्य वत्यति न सज्जते स्मिन् सवा इदम विश्वम अमोघ लीला, ये इदम विश्वम, ये जो जगत है, इसको क्या कहा गया है? अमोघ लीला, भगवान की अमोघ लीला। भगवान का एक नाम है अमोघ लीला, अमोघ लीला दा कोई है अमोघ लीला दा। अमोघ का अर्थ क्या है? जिसके अंदर जरा सा भी कोई कमी ना हो। ये भौतिक जगत में भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि भगवान की सृष्टि है। ईश्वर उपनिषद में क्या कहा गया है मंगलाचरण में? ओम पूर्ण मदः। ये कौन सा है बौद्धिक जगत? क्या है वो भी? पूर्ण है, भगवान से उत्पन्न हुआ सब प्रत्येक चीज पूर्ण है। ये बौद्धिक जगत भी पूर्ण है, लेकिन मुझे ये अपूर्णताओं को क्यों अनुभव करना पड़ रहा है? क्योंकि भौतिक जगत पूर्ण है, लेकिन मुझे भौतिक जगत में रहना वो पूर्ण नहीं है। द प्रॉब्लम इज नॉट इन द मेटीरियल वर्ल्ड, द प्रॉब्लम विच इज विथ मी स्टेइंग इन दिस वर्ल्ड। तो समस्या भौतिक जगत नहीं है, समस्या क्या है? मैं इधर हूं वो समस्या है। तो भगवान ने इस भौतिक जगत को बहुत परफेक्टली बनाया है, लेकिन इम्परफेक्शन क्या है? मैं यहां हूं, ये है, ये है तकलीफ। हाँ, उनका प्रश्न ये है कि मान लो कि मैंने एक रसगुल्ला खाया, शुरुआत में बहुत अच्छा लगा, आगे दूसरा खाया तो उसने स्वाद देने को खा गया। जब मैंने रसगुल्ला खाया, ये जो जो सुख है जो आपको मिला है, ये ही संस्पर्शजा भोगा। संस्पर्श जब इंद्रियां इंद्रियों के विषय वस्तुओं के संस्पर्श में आता है, सब कुछ भोग उत्पन्न होता है। ये जो भोग का आत्मा के साथ कुछ संबंध नहीं है, तब प्रश्न है कि ये भोग है क्या? भोग क्या है? ये भोग है गुणों का खेल। जैसे भगवत गीता में कहा, कहते हैं भगवान क्या कहते हैं? अहंकार आत्मा कर्ता हम मन्यते प्रकृति ही क्रियमाणा। ये ही संस्पर्शजा जो है वो प्रकृति ही क्रियमाणा नहीं है। तब मैं आपके लिए और एक प्रश्न देता हूं, आपको रसगुल्ला दिया तो आपको अच्छा लगा, अगर वही रसगुल्ला किसी और को दे बोले क्या है? मुझे मिर्ची का भज्जी दो, तो ऐसा क्यों? और आपको अच्छा लगा तो उसको भी लगना चाहिए, क्योंकि आपका जीवा सत्वगुण से बना है। रसगुल्ला जो है वो सात्विक है, इसलिए वो आपको अच्छा लगा, लेकिन उसका जीवा जो है रजस तमो से बना हुआ है। जब तक उसको रजस तमस से स्पर्श नहीं होता है, तब तक उसको अच्छा नहीं लगता। इससे क्या कहा गया? वो भगवान क्या कहते हैं? प्रकृति ही क्रियमाण। तब नेक्स्ट आपका प्रश्न ये है कि जब मैंने एक रसगुल्ला खाया या दूसरा खाता हो तो इतना यह सुख क्यों नहीं मिला? वो भी जिह्वा भी सात्विक है, तो ये रसगुल्ला भी सात्विक है, मिलना चाहिए। तब प्रश्न है कि जैसे आपने खाया तो क्या हुआ? रजोगुण की वृत्ति बढ़ गई, तो इसलिए वो सात्विक चीज से वापस आपको आनंद नहीं है। तब क्या हुआ? आपको कुछ रजस चीज चाहिए, क्योंकि रजोगुण की वृत्ति बढ़ गई। उसके बाद तमोगुण चाहिए, क्यों? आपको हजम करना है, सोना है, तमोगुण की वृत्ति बढ़ गई। तो इसलिए ये सब गुणों का खेल है। अगर अच्छा आप प्रश्न पूछे जाओगे सांख्य ये फिजिक्स केमिस्ट्री है, वैदिक फिजिक्स है, वैदिक केमिस्ट्री है। इससे भगवत गीता में भगवान कहते हैं क्या वो श्लोक? सत्वम रजस्ताभिभूय एक गुण दूसरे गुण के साथ कंपटीशन चलाता रहता है। हाँ, रजस तमस चाय भूया सत्वम भवति भारत। सत्वम रजस तम इति ऐसा कुछ एक श्लोक है। जहां भगवत गीता उस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब रजोगुण और सत्वगुण रहता है, सत्वगुण रहता है, ये क्या करता है, रजोगुण उसको धक्का देता है और बाद तमोगुण धक्का देता है, ऐसे धक्का चलता रहता है कि नहीं। उसका उदाहरण देता हूं, सात्विक तरीके से बैठ के हम जप कर रहे, हरे कृष्ण चल रहा है एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है, लेकिन जब तब क्या होता है, तमोगुण उसको धक्का देता है, तमोगुण आ जाता है। यानी सत्वगुण के बाद कौन सा गुण आता है, तमोगुण आता है। बाद में आपको कोई जगाता है तो तुरंत रजोगुण आता है, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। तो द मोड कॉन्स्टेंटली गो ऑन फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर पोजिशन। इसलिए जब पहला रसगुल्ला आपको अच्छा लगा, दूसरा थोड़ा कम, ये सब गुणों का खेल है। इसलिए भगवत गीता में भगवान बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, प्रकृते ही क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वथा। ये तीन गुणों के द्वारा कठपुतली जैसा भगवान हमको नचाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा मैंने गुणों के खेल में नाच नाच के थक गया हूं। लेकिन खेलना स्वभाव प्रवृत्ति है जीव का, मैं कृष्ण के साथ खेलना चाहता हूं। नाउ आई हैव बीन कंट्रोल्ड एनफ बाय माया, नाउ आई वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय कृष्ण, आई वांट टू प्ले विद कृष्ण, आई डोंट वांट टू प्ले विद माया एनी मोर। ये याति का सरकार बड़ा अच्छा प्रश्न है। अशाश्वत भौतिक जगत जो है वो प्रकट होता है अप्रकट होता है, अस्तित्व में भौतिक जगत जो है वो शाश्वत है। इससे भगवत गीता भगवान क्या कहते हैं, परस्तस्मास्तु भाव्योन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातन। ये भौतिक जगत सनातन है लेकिन कभी व्यक्त होता है कभी अव्यक्त होता है। जैसे कोई सिनेमा है, सीडी में है पिक्चर, जब आप कंप्यूटर में डालोगे या टीवी में डालोगे तब दिखता है, जब वो सीडी निकाल दोगे तो वो दिखता नहीं है। अभी सिनेमा दिख नहीं रहा, इसका अर्थ क्या है, वो नहीं है, वो सीडी के अंदर है, छुपा हुआ है। उसी प्रकार भौतिक जगत भी व्यक्त होता है और अव्यक्त होता है, इसलिए भौतिक जगत भी शाश्वत है लेकिन कभी प्रकट होता है कभी अप्रकट होता है। भौतिक जगत को प्रकट करने की क्रिया को सृष्टि कहा गया है, अप्रकट होने की क्रिया को विनाश कहा गया है, प्रलय कहा गया है। एक दृष्टिकोण से देखा जाए ना सृष्टि है ना प्रलय है, प्रकट और अप्रकट है। इसलिए कहा गया है कि द मैनिफेस्टेशन ऑफ मेटीरियल वर्ल्ड, अनमैनिफेस्टेशन ऑफ मेटीरियल वर्ल्ड। भगवान शाश्वत होने के नाते उनके सारे शक्तियां भी शाश्वत है, इसलिए भौतिक प्रकृति भगवान की वो भी शाश्वत है। लेकिन ये टेम्पररी इसलिए है क्योंकि हमारा जो अनुभव है सुख का, अस्तित्व का इस जगत में, वो टेम्पररी है। जगत टेम्पररी नहीं है। जैसे ये शरीर है, शरीर टेम्पररी नहीं है एक दृष्टिकोण देखा जाए। क्यों, मैं इस शरीर में हूं, अभी शरीर से निकल जाऊंगा, ये शरीर परिवर्तन होता है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के रूप में। इसलिए भौतिकवादी साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आइंस्टीन ने क्या कहा, ही इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। तो साइंटिस्ट लोग भी यही बात डिस्कस पे आए, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये शरीर भी एनर्जी है लेकिन टेम्पररी क्या है, मेरा इस शरीर में वास जो है वो टेम्पररी है। लेकिन इसको लंबा थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, इससे बोलते ये शरीर नश्वान है, नाश्वर। शरीर नश्वर क्या है, मेरे लिए नश्वर है लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से नहीं है, वो परिवर्तन होता रहता है बस उसका। मैंने कहा पूर्ण आनंद में नहीं कहा। भौतिक जगत पूर्ण है किस हिसाब से पूर्ण है? इस जगत में एक बद्ध जीव को रहने के लिए प्रत्येक सुविधा इस भौतिक जगत में इस हिसाब से पूर्ण है। और मैंने ये नहीं कहा कि आनंदमय है। भौतिक जगत इसलिए पूर्ण है क्योंकि भगवान जिस उद्देश्य से भौतिक जगत बनाए हैं, भगवान का उद्देश्य पूर्ण होने के नाते ये भौतिक जगत पूर्ण है। लेकिन इस भौतिक जगत में हमारा रहना पूर्ण नहीं है। बट पर्पस फॉर इज कृष्णा हैज क्रिएटेड, द पर्पस इज परफेक्ट। आपको भूख लगता है तो खाना है, आपको हवा चाहिए हवा है। इस जगत में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो बेकार है, हर चीज परफेक्टली मेड है। इस बद्ध जीव को इधर रहने के लिए और जिसको चाहिए उधर से मुक्त होने के लिए हर प्रकार का सुविधा इस भौतिक जगत में है। ये बात ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय।